भजन संहिता 32। ऐसा माना जाता है कि बेतशेबा के साथ पाप करने के बाद दाऊद ने ये भजन लिखा था, जब परमेश्वर के नबी नाथान ने दाऊद को उसके पाप का बोध कराया था। हमें भजन 51 में भी ऐसी ही स्थिति मिलेगी। ये पश्चाताप का एक और भजन। दाऊद के अनेकों पत्नियां थीं। एक दिन वो अपनी छत पर खड़ा था और यरूशलेम शहर को देख रहा था। उसने पास में ही एक घर की छत पर एक स्त्री को नहाते हुए देखा। वो उस पर मोहित हो गया और उसने अपने नौकरों को उसके घर भेजा कि उसे ले आए, और दाऊद ने उसके साथ व्यभिचार किया। उस समय उसका पति दाऊद की सेना के साथ योआब के नेतृत्व में युद्ध में गया हुआ था। दाऊद को कुछ सप्ताह बाद उस स्त्री से ये समाचार मिला, मैं गर्भ से हूं। दाऊद ने आज्ञा दी कि उसके पति को युद्ध से घर वापस बुलाया जाए, और उसने उससे कहा, वहां कैसा चल रहा है, युद्ध की क्या प्रगति है, लोग कैसे हैं, उनका मनोबल कैसा है, और ऐसा कहकर ये आशा की कि पति घर जाकर अपनी पत्नी के साथ रात बिताएगा। परंतु वो जैसा सोच रहा था वैसा हुआ नहीं, क्योंकि उसका पति अपने घर न जाकर रात को दाऊद के महल के बरामदे में ही सो गया। सुबह दाऊद को बताया गया कि वो रात को अपने घर नहीं गया। दाऊद ने उसको बुलाया और कहा, तुम क्यों अपने घर नहीं गए? तुम्हारे पास अच्छा मौका था कि अपनी पत्नी के साथ रह लेते। उस पुरुष ने उत्तर दिया, मेरे सारे सैनिक वहां युद्ध में हैं, और क्या ये मेरे लिए अच्छा होता कि मैं अपनी पत्नी के साथ रात बिताता? उस दिन दाऊद ने उसे ये सोचकर अधिक मदिरा पिला दी कि यदि उसने अधिक मदिरा पान किया तो वो लड़खड़ाते हुए घर पहुंचेगा और उसे पता भी न चलेगा, किंतु वो रात महल के आंगन तक ही जा सका और वहीं गिरकर सो गया। इस तरह दाऊद ने दुविधा में फंसकर दुखद रास्ता अपनाया। दाऊद ने अपने सेनापति योआब को आज्ञा दी कि वो इस पुरुष को युद्ध के बीच में रखें और बाकी सेना को हटा ले ताकि वो मारा जाए। योजना सफल हो गई। ऊरिया मारा गया और दाऊद ने बेतशेबा को अपनी पत्नी ग्रहण कर लिया। जो बच्चा दाऊद के व्यभिचार से पैदा हुआ वो बहुत बीमार हो गया। दाऊद ने उसके लिए प्रार्थना भी की, परंतु वो बच्चा मर गया। तब नबी नाथान दाऊद के पास आया और कहा, तेरे राज्य में एक पुरुष है जो बहुत धनी है, उसके पास अनेक सेवक और बहुत सारे पशु हैं। उसके पड़ोस में एक निर्धन पुरुष रहता है जिसके पास केवल एक भेड़ थी जो बच्चे के समान थी। वो उसके साथ सोती थी, उसकी मेज पर खाती थी, वो उसके परिवार की चेहती थी। उस धनी पुरुष के यहां कुछ मित्र भोजन पर आए और उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि पड़ोस में जाकर बलपूर्वक उस निर्धन पुरुष की भेड़ को लेकर मारो और मित्रों के लिए भोजन तैयार करो। दाऊद क्रोधित हो गया और उसने नबी से कहा, उस पुरुष को अवश्य मार डाला जाए। और नाथान ने कहा, दाऊद तू ही वो पुरुष है। अब दाऊद का उत्तर पश्चाताप का था। दाऊद का ये कार्य भयानक था। वचन दाऊद के इस कार्य की क्षमा का वर्णन नहीं करता है, परंतु दाऊद के पश्चाताप के बारे में अवश्य बताता है। ऐसा समझा जाता है कि दाऊद का ये भजन उसके जीवन के इस पक्ष से संबंधित है। जब वो अपने पाप के बोध की अवस्था से गुजर रहा था और उसमें पाप का बोध था कि उसने ऐसा कुकर्म किया, तब उसने ये भजन लिखा था। भजन 32 पद 1, क्या ही धन्य आनंदित है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। कितना खुशी का समय होता है जब मुझे निश्चय हो जाता है कि मेरे अपराध क्षमा किए गए, मेरे पाप ढांप दिए गए हैं। यहां ध्यान दे कि अपराध और पाप में भिन्नता है। पाप सदा जानबूझकर नहीं होता। पाप शब्द का मूल शब्द है निशाने से चूकना। परमेश्वर कहता है यहां निशाना है, मैं चाहता हूं कि इसे साधो। ठीक है, मैं निशाना लगाता हूं और चूक जाता हूं। मैं जानबूझकर चूकता नहीं, मैं निशाना लगाने की कोशिश करता हूं, परंतु हो सकता है निशाना ना लगे। ये भी पाप हो सकता है क्योंकि मैं निशाना चूक गया। चाहे मैं जानबूझकर या कमजोरी से या अयोग्यता से चूका, परंतु मैं उस निशाने से चूक गया जो परमेश्वर ने ठहराया है। इसलिए बाइबल कहती है सब ने पाप किया। बाइबल आपको पापी कहती है। आप चाहे सचेत हो, परंतु परमेश्वर कहता है तुम सब निशाने से चूक गए हो। मैं कहता हूं कि चिन्ह सिद्धता है और परमेश्वर सिद्धता चाहता है। क्या यहां कोई है जो कह सकता है मैंने निशाने पर मारा है, मैं सिद्ध हूं, मुझे देखो श्रीमान, मैं सिद्ध हूं? नहीं, मेरे विचार में हम सब ये स्वीकार करेंगे, मैं निशाने से चूक गया हूं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम जानबूझकर चूके हैं। मैं सदा वैसा अच्छा नहीं हूं जैसे मैं चाहता हूं, मैं निशाने से चूक गया हूं। अपराध थोड़ा भिन्न है क्योंकि अपराध जानबूझकर होता है। जानबूझकर निशाने से चूक जाना, ये मेरी ओर से जानबूझकर आज्ञाओं का उल्लंघन है। परमेश्वर कहता है ये रेखा है और मैं नहीं चाहता कि तुम इस रेखा के बाहर जाओ। ठीक है, मैं अपने कार्यों में व्यस्त हो जाता हूं और मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि मैं रेखा के पार हो गया हूं। परमेश्वर कहता है एक मिनट ठहरो, वहां रेखा है जिसके पार मैंने कहा मत जाना। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा करे, मैं ये भूल गया था, मैंने ऐसा नहीं सोचा था, फिर भी पार चला गया। ये पाप है, ये निशाने से चूकना है, ये जानबूझकर नहीं, ये इच्छा से अपराध नहीं था। जबकि यदि परमेश्वर कहे ये रेखा है चक, तुम इसके पार मत जाना, मैं जानबूझकर उसके पार जाता हूं और कहता हूं ठीक है प्रभु, तुम इसके विरुद्ध क्या करने जा रहे हो? ये जानबूझकर अपनी इच्छा से किया गया काम अपराध है। बहुत बार पाप अपराध से जुड़ा होता है। मैं भली इच्छा से आरंभ करता हूं पर फिर बुराई से मन न फिरने के कारण मैं उसे छिपाने की कोशिश करता हूं और ये मेरे व्यवहार से जुड़ जाता है और अपराध बन जाता है। लेकिन जब ये सब क्षमा हो जाता है तब मैं कितना आनंदित होता हूं। जब सब खत्म हो जाता है, सारा पाप ढाप दिया जाता है, पाप क्षमा कर दिया जाता है। भजन 32 पद 2, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। दाऊद ने छलने की पूरी कोशिश की, मेरा मतलब है वो ऊरिया का निपटारा करना चाहता था घर जाकर अपनी पत्नी के साथ रहो। और उसने हर प्रकार की छलपूर्ण योजना बनाई, परंतु यहां वो एक रोचक अनुभव के बारे में बात कर रहा है। ओह, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। मैं समझता हूं कि बहुत से लोगों ने सांता क्लॉस के कारण परमेश्वर के बारे में गलत धारणा बना ली है। बहुत से लोग परमेश्वर को प्रतापी सांता क्लॉस मानते हैं और सोचते हैं कि जो कुछ मैं चाहता हूं मुझे परमेश्वर के पास आकर कहना है या मेरे क्रिसमस ट्री के नीचे रख देना है और जो मैं कहूंगा परमेश्वर मुझे वही देगा, क्योंकि आखिरकार वो भी सांता क्लॉस ही तो है जो मेरा निवेदन सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। लोग परमेश्वर के बारे में ऐसी धारणा रखते हैं तो हम सोचते हैं कि वो भी सांता क्लॉस की तरह एक सूची बनाता है और दो बार ध्यान से देखता है कि कौन शरारती है और कौन अच्छा है। और यदि आप शरारती हुए तो आपको लकड़ी का बंडल मिलेगा। आप जानते हैं वो बुरे बच्चों के लिए खिलौने नहीं लाता है, वो सूची बनाता है और लेखा रखता है। अब वो एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात करता है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म को यहोवा लेखा ना ले। संसार में ऐसा कौन होगा, ऐसा मनुष्य जिसे परमेश्वर अपने विचारों में भी खाली सूची में नहीं रखता, वो उस पर अधर्म का दोष नहीं लगाता। पौलुस कहता है, रोमियो 8:1, अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। ओह, मेरा जीवन मसीह में कैसा धन्य है, कैसी महिमा से पूर्ण है मेरा जीवन। मेरा जीवन मसीह में है। यदि हम प्रकाश में चले जैसे वो प्रकाश में है, हम एक दूसरे के साथ संगति में होंगे और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू लगातार मुझे मेरे पाप से शुद्ध करता रहता है। परमेश्वर मेरी असफलता का लेखा नहीं रखता, वो मेरे पापों का भी लेखा नहीं रखता है। मैं कैसा धन्य मनुष्य हूं, उसने मेरे अपराध ही क्षमा नहीं किए, उसने मेरे पापों को दो ही नहीं डाला, परंतु वो मेरी आज की चूक का भी लेखा नहीं रखता। क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसका अपराध क्षमा किया गया। ये वो मनुष्य है जो यीशु मसीह में बना हुआ है। दाऊद बताना चाहता है कि जब उसने सारी बातों को ढांपने और छिपाने का प्रयास किया तब उसके भीतर क्या प्रतिक्रिया हुई। भजन 32:3, जब मैं चुप रहा, जब मैं छिपाने की कोशिश कर रहा था, जब मैं स्वीकार नहीं कर रहा था, जब मैं इसे प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार नहीं रहा था, तब क्या हुआ। पद 3 में आगे लिखा है, तब दिन भर कहराते कहराते मेरी हड्डियां पिघल गई। क्या आप जानते हैं कि आप अपने गुनाह छिपाने की लाख कोशिश करें वे प्रकट ही हो जाएंगे। अपराध के साथ सदा ही एक अज्ञात विचार जुड़ा रहता है कि हमें दंड पाना है, और यदि मैं उससे छुटकारा प्राप्त नहीं करता तो मैं सामान्य व्यवहार करने लगता हूं, क्योंकि मेरा विवेक अपराधी है और वो मुझे दंड दिलाना चाहता है। और जब कोई मुझे बुरा भला कहता है तो मेरे मन को शांति सी मिलती है, क्योंकि वो एक प्रकार से मेरा दंड बन जाता है और इस प्रकार मेरा चित्त शांत होता है। जब मैं बालक था मुझे कोई समस्या नहीं थी, मेरे पिता मेरे अपराधी विवेक की प्रभावकारी ढंग से देख रेख करते थे। हमारे घर का वो पुरानी खुबानी का पेड़, ये टूटी हुई टहनियाँ आदि सबके अपराध बोध से मैं मुक्ति पा चुका हूँ। परंतु अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब कोई मुझे सोने के कमरे में ले जाकर मनोविज्ञान संबंधी चिकित्सा नहीं देता है, इसलिए अब मुझे दंड पाने के लिए कार्य करना पड़ता है, जैसे असामान्य व्यवहार, पागलपन आदि। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीधा मुंह पर कहने से नहीं चूकते, और हम इस व्यवहार के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया भी देखते हैं कि वे अप्रसन्न होते हैं, क्रोधित होते हैं। लेकिन जब आप अपने अपराध छिपाते हैं और ढांपते हो, तब आपके भीतर हर समय एक गर्जन होती रहती है, अर्थात खलबली होती रहती है। दाऊद कह रहा है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कहराते कहराते मेरी हड्डियां पिघल गई। भजन 32:4। क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी जुराहट बनती गई। मेरा जीवन सूख गया जैसे गर्मियों में सूखा पड़ता है, ना कोई नमी ना कोई जीवन। मुझे लगा कि मैं मर रहा हूं। सेला भजन में एक विचार का अंत बताता है, और जब हम नए विचार को देखते हैं, पहले पाप के ढांपने का प्रयत्न था, फिर अपराध को छिपाने का प्रयत्न किया, परंतु अब हम नई दिशा में बढ़ते हैं। भजन 32:5। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। बाइबल कहती है, पहला योहन्ना 1:9, यदि तुम अपने पापों को मान लो तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। भजन 32:5। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इब्रानी भाषा के भावार्थ में तुरंत कार्रवाई का विचार विहित है। दूसरे शब्दों में, जिस क्षण मैंने हृदय में कहा, मैं अपने अपराधों को मान लूंगा, शब्द मेरे मुंह से निकलने से पहले परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया। परमेश्वर आपके व्यवहार में परिवर्तन देखता है। जिस क्षण आप मन में कहते हैं, ओह परमेश्वर, मैं ये स्वीकार करता हूं कि मुझसे गलती हुई, मैं परमेश्वर तेरे सम्मुख इस गलती को सुधारूंगा, उसी क्षण परमेश्वर का अनुग्रह बहता हुआ आपके जीवन पर आता है और आपके सारे पाप धुल जाते हैं। हम क्यों अपराधों को उठाए हुए हैं? हम क्यों अपने पापों को उठाए रहे, जबकि परमेश्वर हमें क्षमा करने को तैयार है, धोने को तैयार है? जब मैंने कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। अब हम तीसरे विषय पर जाते हैं, भजन 32:6। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। निश्चय ही हम सबको परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह और उसके पालक सामर्थ्य के कारण उसकी खोज करनी चाहिए। जिस समय जब जल की बड़ी बाढ़ आए, कष्ट का समय आए, तब वो आपको हानि न पहुंचा पाएगा। भजन 32:7। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। एक और सेला, हम भजन के एक और नए विषय में जाते हैं। परमेश्वर मेरे छिपने का स्थान है, वो संकट में मेरी रक्षा करता है, वो मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेता है। भजन 32 पद 8 में वाणी बदल जाती है। अब परमेश्वर भजनकार को उत्तर दे रहा है। अब तक दाऊद परमेश्वर से बातें कर रहा था और परमेश्वर के साथ अपने संबंधों का वर्णन कर रहा था, परंतु अब परमेश्वर ने दाऊद को उत्तर दिया और दाऊद परमेश्वर का जवाब लिखता है। यहां परमेश्वर दाऊद से कहता है, भजन 32 पद 8, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। धर्मी मनुष्य के कदम प्रभु की आज्ञा के अनुसार होते हैं। परमेश्वर कहता है, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। भजन 32 पद 9, तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रस से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। परमेश्वर कहता है, तुम खच्चर के समान न बनो जिनकी उमंग लगाम से रोकनी पड़ती है। लगाम कष्टदायक होती है, जब आप लगाम को खींचते हैं तब वो कष्ट देती है, परंतु लगाम घोड़े और खच्चर के मुंह में लगानी पड़ती है ताकि वे चलाए जा सकें, अर्थात आप उनको नियंत्रित कर सकें, ताकि वे आप पर ही पाव न रख दें। आप उनके मुंह में लगाम डालते हैं और यदि वे आपकी नहीं सुनते या आपकी इच्छा से नहीं चलते तो आप लगाम को खींचते हैं और उनका मुंह खींचता है जो कष्टदायक होता है, और इस प्रकार वो उसी राह पर चलता जाता है जिस पर आप इसे चलाना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें इस तरह से चलाना नहीं चाहता, एक कच्छर की तरह ना समझ मत बनो कि मुझे तुम्हें और तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए कठोर नियम अपनाने पड़े, मैं तुम्हें कृपा दृष्टि से चलाऊंगा। हमने स्वयं अपने लिए कठिनाई पैदा की है जब हम परमेश्वर के प्रति संवेदन शून्य हो जाते हैं, तब उसको कठोर होना पड़ता है। परमेश्वर को कष्टपूर्ण व्यवहार से प्रसन्नता नहीं होती है। परमेश्वर योना को एक बड़ी मछली का भोजन बनाना नहीं चाहता था। वो मछली परमेश्वर का एक साधन थी कि योना परमेश्वर की ओर ध्यान दे। वो आपके जीवन में कष्टदायक परिस्थितियां नहीं लाना चाहता कि आप उसकी ओर ध्यान दे और आपके जीवन की दिशा बदल जाए। इसलिए वो कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। भजन 32 पद 10 और 11, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मग्न हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। जैसे मैंने कहा, जब आप स्वयं भजन पढ़ते हैं तब उसका अनुसरण करना आपके लिए अच्छा अनुभव ही होगा। जब वो कहता है प्रभु में आनंदित रहो, तो प्रभु में आनंदित हो जाओ। जब वो कहता है मगन हो, तब आपको मगन होना चाहिए। और यदि वो कहता है खुशी से चिल्लाओ, तो ऐसा भी करके देखो, खुशी में चिल्लाओ, प्रभु में चिल्लाओ।